धमाधाम कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बन चारी यमुना तीरा बन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरसहस्री श्रीमदीष्टवाहिन ग्रीस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रवचन फाउंडर आचार्य शिव दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से गहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सरथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री गोंडताय भगवान की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या 53 पृष्ठ संख्या 97 मेरे पीछे बोलिए श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि।
शब्दार्थ बोलिए।
श्रुति वैदिक ज्ञान के विप्रतिपन्ना कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना ते तुम्हारा यदा जब स्थास्यति स्थिर हो जाएगा निश्चला एक निष्ठ समाधा दिव्य चेतना या कृष्ण भावना मृत में अचला स्थिर बुद्धि ही बुद्धि तदा तब योगम आत्म साक्षात्कार अवाप्स्यसि तुम प्राप्त करोगे। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। यहां धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। बोलिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकायं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादं सह गण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाशात देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए, श्लोक समझेंगे। भगवान कह रहे हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदास्थास्यति निश्चला। श्रुति का मतलब वेद, वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित हुई जो तुम्हारी बुद्धि है, है ना। विप्रतिपन्ना, विप्रतिपन्ना माने बुद्धि जो है ना जा रही है कहाँ, उल्टी रास्ते में, उल्टे रास्ते में जा रही है। यदास्थास्यति निश्चला, जब स्थिर हो जाएगी, समाधाव अचला बुद्धि, बुद्धि जो ना अचल हो जाएगी समाधि में, तदा योगम अवाप्सि, तब योग प्राप्त करोगे। योग का मतलब भगवान का साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार। योग का मतलब भगवान को आमने सामने देखना, है ना, भगवान से संबंध जोड़ना। तब भगवान से संबंध जुड़ेगा जिस समय समाधि में बुद्धि स्थिर हो जाएगी। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ ये होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो समाधि का मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं कि समाधि का मतलब ये नहीं है कि अष्टांग योग की समाधि। अष्टांग योग की समाधि कैसी होती है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, है ना। तो ध्यान के बाद समाधि होती है, तो ध्यान में भी सब काम बंद करने होते हैं, कुछ काम नहीं, बिल्कुल एकांत में। और समाधि ध्यान की जो निरंतर अवस्था है वो समाधि है। तो अष्टांग योग की समाधि है वो अलग है। यहाँ जो भगवद गीता में भगवान समाधि की बात कर रहे हैं वो वो समाधि नहीं है, ये वो समाधि नहीं है। क्योंकि यहाँ तो युद्ध करना है अर्जुन को, भगवान युद्ध भूमि में समाधि की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता, वो समाधि नहीं हो सकती, है कि नहीं। क्योंकि वो ध्यान योग की विधि में है, तो ये बताया गया है कि एकाकी यत चित्तात्मा योगी युंजीत सततम आत्मान रहस्य, एकांत में रहना और अकेले रहना, है ना। तो ध्यान योग की जो समाधि है तो उसमें तो व्यक्ति को एकांत में रहना होता है और अकेले रहना पड़ता है कि नहीं, जहां कोई ना तो भीड़ भाड़ हो और ना कोई शोरगुल हो। यहाँ पर तो खूब भीड़ भाड़ भी है और शोरगुल भी है, युद्ध भूमि है, लड़ाई मारकाट, तो यहाँ पर वो समाधि कैसे हो सकती है, है? तो अब समाधि का मतलब यहाँ पर जो भगवान है कह रहे हैं वो क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं पूर्ण कृष्ण भावना भावित। जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना भावित है तो वो समाधि, उसको समाधि कहते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। ये समाधि मतलब कर्म करते हुए समाधि, और वो कर्म क्या है, कृष्ण की सेवा। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, तो कृष्ण की सेवा में पूर्ण समर्पित वो समाधि। जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे कि कोई भक्त है वो किताबों की टेबल लगा करके बैठा हुआ है ना, लोग आ रहे हैं देख रहे हैं है ना, तो वो जो है पुस्तकें बेच रहा है और लगा हुआ है प्रभुपाद की पुस्तकों को वितरण करने में, तो ये पूर्ण समाधि है। कोई व्यक्ति अगर पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में लगा है तो ये पूर्ण समाधि है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। हाँ, तो इस श्लोक का यही शुरू में शब्द है, श्रुति विप्रतिपन्नाति यदास्थासि निश्चला। जो बुद्धि है वो श्रुतियों की जो ना अलंकारमयी वाणी में विचलित हो जाती है। तो हम पढ़ के सुनाएंगे अभी महाभारत का भी श्रुति फल बताया गया कि अगर महाभारत श्रवण करोगे तो उसमें क्या क्या फल प्राप्त होगा, है ना। तो बहुत उसमें जो है ना बहुत प्रकार के भोगों का वर्णन है कि अगर आप श्रवण करोगे तो इससे आपको ये फल मिलेगा वो फल मिलेगा, कई प्रकार के भोगों का वर्णन है। तो उसमें बुद्धि अगर विचलित हो गई तो फिर आप समाधि समाधि में स्थित नहीं हो सकते हैं और फिर भगवान से संबंध नहीं जोड़ सकते हैं। तो यही प्रभुपाद जी बताते हैं कि स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि कृष्ण के आदेश वो समझ सकता है। समाधि की स्थिति ऐसी है जिसमें कोई व्यक्ति कृष्ण के आदेश को समझ सकता है। मतलब जैसे अर्जुन से भगवान बात कर रहे हैं, अर्जुन को आदेश दे रहे हैं, उसी प्रकार से आप जो है उस पूर्ण कृष्ण भावना अमृत की अवस्था में भगवान से आदेश प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी प्राप्त करते थे, भगवान से आदेश प्राप्त करते थे, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। निश्चयात्मक ज्ञान मतलब किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहेगा, दुविधा नहीं रहेगी कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये करूं या वो करूं। परेशान रहता है मन कि क्या करूं क्या ना करूं, नहीं, निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है, है ना। जैसे गीता के अंत में भी अंतिम श्लोक क्या बताया गया है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो ध्रुवा नीति का मतलब अचल नीति, जहां अर्जुन और कृष्ण है वहां पर व्यक्ति को अचल नीति प्राप्त होती है। अचल नीति मतलब कि जो भी कार्य करना है निश्चित रूप से उसे करना है, फिर कोई बिगा नहीं सकता, उसको विचलित नहीं कर सकता है, यही करना है ना। क्योंकि भगवान का आदेश मिल जाता है तो फिर वो दुनिया के जो है ना किसी प्रकार के खतरों से वो जो है भयभीत नहीं होता है। ये करना है, वो असंभव कार्य लगता है लेकिन वो करता है क्योंकि भगवान का आदेश। जैसे प्रभुपाद जी तो स्थिरता से जो है ना उन्होंने कार्य किया जबकि असंभव था, 70 साल के बूढ़े थे, पास में पैसा भी नहीं और कोई व्यक्ति भी सहायक नहीं था प्रभुपाद का, ना तो पैसा उनके पास था ना कोई व्यक्ति उनके साथ था, और वृद्धावस्था शरीर भी उनका साथ नहीं दे रहा था, है कि नहीं, दिल के द्वारे भी पड़े उनको, है कि नहीं। तो भी उन्होंने ना तो किसी डॉक्टर की सहायता ली, ना किसी से पैसे मांगे, ना किसी से सेवा मांगी। तो वो जो है ना असंभव कार्य था, जबकि पहले कभी गए भी नहीं थे अमेरिका, है कि नहीं, तो भी भगवान के आदेश से कार्य कर रहे थे तो वो सफल हुआ है? और ऐसा सफल हुआ कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, है ना। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस समाधि की स्थिति में भगवान से आदेश प्राप्त होते हैं तो निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है, उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। तो कृष्ण की आज्ञा का पालन, गुरु की आज्ञा का पालन, केवल बस। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं उसे और कुछ नहीं करना, आज्ञा का पालन मात्र करना है, मात्र। मतलब अपनी बुद्धि नहीं लगानी कुछ भी, बुद्धि लगाओगे तो परेशान हो जाओगे, है कि नहीं। आज्ञा का पालन करना है कि बस करो चलो। जैसे कि वसुदेव जी हैं, जब भगवान, यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हो गया है, अब हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे वसुदेव जी, भगवान का आदेश है, भगवान का आदेश है क्या कि मुझे ले जाओ यहां से गोकुल। अब अगर बुद्धि लगाए वसुदेव जी हैं, तो कितने प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न होंगे। वो बंधे हुए हथखड़ी बेड़ियां, बहुत जो ना कठोर बंधन में वो बंधे हुए हैं, तो कैसे ले जाएं। और फिर अगर वो बंधन किसी प्रकार खुल जाए, तो फिर बाहर के जो ना ताले हैं, दरवाजे हैं, साकल हैं, तो फिर कैसे निकल सकते हैं। अगर वहां से निकले हैं, तो कड़े पहरेदार हैं, शस्त्र सहित सैनिक हैं, कैसे निकले। अगर वहां से भी अगर निकले तो अंधकार, अंधकार, पूरा अंधकार है रास्ते में, और फिर घोर वर्षा हो रही, तो कैसे निकले। अगर वहां से भी निकले तो जमुना जी में बाढ़ आ रही है, कैसे जमुना जी पार करें। लेकिन भगवान का आदेश है क्या कि मुझे तुम ले जाओ गोकुल। तो उन्होंने बस, वो जैसे ही ले जाने के लिए तैयार हुए, तुरंत हथकड़ी बेड़ियां अलग हो गई, और जैसे दरवाजे में आए, ताले खुल गए, साकल खुल गई, दरवाजा खुल गया, बाहर निकले वो पहरेदार सो गए। फिर आगे निकले तो जो है ना शेष जी ने अपना छाता छत्र लगा दिया ऊपर, और जो है ना प्रकाश टॉर्च लाइट भी जो है ना, मतलब भगवान के शरीर से निकल रही है, अंधकार दूर हो रहा है। आगे आए जमुना जी ने रास्ता दे दिया, उनके कपड़े भी नहीं भीगे और जमुना जी पार कर गए। तो इस तरह से जो है सब कठिनाइयां जो है दूर होती गई, केवल आदेश का पालन किया। तो प्रभुपाद जी इसलिए लिखते हैं तात्पर्य में कि उसे केवल कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। तो प्रभुपाद जी ने भी अपने को कुछ भी श्रेय नहीं दिया कि आपने इतना बड़ा कार्य किया। लोग कहते थे प्रभुपाद से कि आपने इतना बड़ा कार्य किया, तो प्रभुपाद जी क्या कहते थे, मैंने क्या किया, मैंने केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, और बाकी तो सब कार्य अपने आप होता गया। अपने आप का मतलब जो भी हो, कृष्ण की कृपा से सब होता गया। मैंने क्या किया, मैं तो केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा था बस, और मैं क्या कर रहा था। जैसे वसुदेव जी कृष्ण के आदेश का पालन कर रहे थे, और सब अपने आप रास्ता बन रहा था, सब कठिनाइयां अपने आप दूर हो रही थी कृष्ण के जो है द्वारा, सब कार्य हो रहा है। और अर्जुन से भी भगवान क्या कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, कि हे सव्यसाची तुम निमित्त मात्र बनो, केवल निमित्त मतलब इंस्ट्रूमेंट है ना, कठपुतली है ना। तो कठपुतली नाचती है ना, तो कैसे जो बाजीगर है ना, क्या बोलते हैं कठपुतली का जो है ना, तो वो जो बाजीगर है, तो वो जो है ना अपने रस्सी से जो है ना कठपुतली को नचाता है ना। तो कठपुतली क्या है, केवल अपना कुछ विरोध नहीं करती है बस, समर्पित हो जाती है, अपने को ढीला छोड़ देती है, बाकी तो भगवान नचाते हैं ना? मतलब भक्त को तो भगवान नचाते हैं, भगवान कार्य कराते हैं। आप केवल भगवान के कार्य में बाधा मत डालो, विरोध मत करो, अपने को ढीला छोड़ दो है ना, कोई उल्टा प्रयास मत करो, भगवान जैसे नचाए वैसे नाचो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझको आप नचाओ कठपुतली की तरह, और मेरी मुख से जो है ना आप ऐसी वाणी निकलवाओ कि जिससे कि आपका संदेश ये लोग समझ पाए, क्योंकि मैं तो समझा नहीं सकता इनको आपका संदेश है ना। तो फिर भगवान ही बोल रहे थे प्रभुपाद जी के मुख से, और भगवान ही सब कार्य कर रहे थे प्रभुपाद जी के शरीर से। तो वो समाधि की स्थिति है जिसमें कि जो भक्त है वो भगवान के आदेश को प्रत्यक्ष समझता है। तो अब पहली पंक्ति को हम समझेंगे, श्रुति विप्रति पन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। श्रुति का मतलब वैदिक मंत्र, तो वैदिक मंत्रों में बहुत से जो है अनुष्ठान बतलाए गए हैं कर्मकांड के, जिनके द्वारा प्रलोभन दिया गया है वेदों में कि आपको भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अब उसका एक नमूना मैं बताता हूँ महाभारत से। महाभारत के अंत में भी जो है बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर महाभारत श्रवण करता है तो उसको कैसे कैसे भोग ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। महाभारत को जो है कोई व्यक्ति जो एक बार अगर श्रवण करे, जानते हैं एक बार श्रवण करना कितना कितना बड़ा महाभारत है, 1,00,000 श्लोकों का है। जो व्यक्ति एक बार श्रीमद् भागवत माफ करना महाभारत को श्रवण करता है और ब्राह्मणों को अभीष्ट वस्तुएं देकर के तृप्त करे तो अग्निस्तोम यज्ञ का फल पाता है और क्या होता है उसे अप्सराओं से भरा हुआ विमान प्राप्त होता है। ठीक है। अब इस प्रकार के श्रवण से जो ना क्या होता है, हम लोग सोचते हा 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 हमको तो ये चाहिए। अप्सराओं से भरा विमान प्राप्त होता है और वह प्रसन्नता पूर्वक एकाग्रचित हो देवताओं के साथ स्वर्ग लोक में जाता है। कितनी बढ़िया बात है, तब तो बस मजा आ गया है ना। तो इस प्रकार से बुद्धि जो है ना क्या है विचलित होती है ना। फिर जो दूसरी बार महाभारत श्रवण करे, दूसरा पारण करे, तो उसे क्या प्राप्त होता है, अतिरात्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उससे क्या होता है, रत्नों के दिव्य विमान पर वो आरूढ़ होता है और ज्यादा सुविधा, और दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करता है, दिव्य चंदन से चर्चित एवं दिव्य सुगंध से वासित होता है, दिव्य अंगद धारण करके बाजूबंद धारण करके सदा देवलोक में सम्मानित होता है। अब तीसरी बार जो महाभारत श्रवण करे तो क्या होगा, तीसरा पारण पूरा करने पर मनुष्य द्वादशाह यज्ञ का फल पाता है और देवताओं के समान तेजस्वी होकर हजारों वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। क्या बात कही, तो बुद्धि ऐसी विचलित होती है ना। ये असली चीज ये है ना, लोग ऐसे सोचते हैं। फिर चौथे पारण में चौथी बार महाभारत श्रवण करे तो क्या होगा, वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है और पांचवी बार महाभारत श्रवण करे तो उससे दूना फल प्राप्त होता है। और वह पुरुष सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी विमान पर आरूढ़ होकर देवताओं के साथ स्वर्ग में जाता है और वहां इंद्र भवन में 10,000 वर्षों तक आनंद भोगता है। ठीक है, तो कैसा लगता है, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, छठी मार महाभारत श्रवण करे तो इससे दूना फल प्राप्त होता है। देखो, 5 बार श्रवण किया उससे दूना 6 बार में, और सातवें में 3 गुना फल मिलता है उससे, तो और भी अच्छा है। सातवीं बार में 3 गुना फल मिलेगा। वो मनुष्य अप्सराओं से भरे हुए और इच्छानुसार चलने वाले वैदूर्य मणि की वेदियों से विभूषित विमान पर बैठकर दूसरे सूर्य की भांति संपूर्ण लोकों में विचरता है, इच्छानुसार सब लोकों में विचरण करता है वो। आठवीं बार अगर महाभारत श्रवण करें तो राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मन के समान वेगशाली और चंद्रमा की किरणों के समान रंग वाले सफेद घोड़ों से जुटे हुए विमान पर आरूढ़ होता है और चंद्रमा से भी अधिक सुंदर मुख वाली जो दिव्यांगनाएं हैं उसकी सेवा करती हैं तथा उन सुंदरियों की गोद में सुख से सोया हुआ वह पुरुष उन्हीं की मेखलाओं के खनखन शब्दों और नूपुरों के मधुर झनकारों से जगाया जाता है। ये प्रलोभन है, तो ये भाषा है वेदों के अलंकार में। फिर नवी बार जो महाभारत श्रवण करे तो श्रोता को यज्ञों के राजा अश्वमेध का फल प्राप्त होता है, वह सोने के खंभों और छज्जों से सुशोभित, वैदूर्य मणि की बनी हुई वेदियों से विभूषित, स्वर्गवासी गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो अपनी शोभा से प्रकाशित होता हुआ स्वर्ग में दूसरे देवता की भांति देवताओं के साथ आनंद भोगता है, उसके अंगों में दिव्य माला और दिव्य वस्त्र शोभा पाते हैं और वह दिव्य चंदन से चर्चित होता है। फिर दसवां पारण कोई करे तो क्या होगा? दसवां पारण पूरा होने पर ब्राह्मणों को प्रणाम करने के पश्चात श्रोता को पुण्य निकेतन विमान अनायास ही प्राप्त हो जाता है। कैसा विमान है? उसमें छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालरें लगी होती हैं, उनसे मधुर ध्वनि फैलती है, बहुत सी ध्वजा पताकाएं उस विमान की शोभा बढ़ाती हैं। उस विमान में जगह जगह रत्न के चबूतरे बने होते हैं, वैदूर्य मणि का फाटक लगा होता है, सब ओर से सोने की जाली द्वारा विमान घेरा होता है, उसके छज्जों के नीचे मूंगे जड़े होते हैं,